Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna. कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्त्व श्रद्धा चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमी चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उचास ते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय के करी के क्षपणासार ओ है प्रवचन सार सो समय सार अविकार।
आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धि सार ग्रंथ में जो लिखा है उसके आधार से प्रथम ऑप्शन संयुक्त हुए पूर्व होने वाली जो पांच लब्धि है उसकी हम कुछ यहाँ जानकारी ले रहे हैं। प्रथमोपशम सम्यक् किसे कहना ये हमने देखा था कि जब कोई जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में से अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक् प्राप्त करता है तब उसे प्रथमोपशम सम्यक् कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो प्रथमोपशम सम्यक् ही प्राप्त करता है। प्रथमोपशम सम्यक् प्राप्त करने के बाद उसको वेदक सम्यक् हो जाता है। ऐसा जीव मिथ्यात्व में आता है तो सम्यक्त्व के काल में उसके मिथ्यात्व में से दो और प्रकृति बनती है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दोबारा मिथ्यात्व में आता है तो ये तीन प्रकृति असंख्यात वर्षों तक बनी रहती है। पहले कितने ही लंबे काल तक उसको होगा तो वेदक सम्यक्त्व ही होगा, दोबारा उपशमिक इमीडिएट नहीं हो सकता। अभी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ है। असंख्यात वर्षों के बाद जबकि वो तीन प्रकृति करीबन अन्य दो प्रकृति मिटने को आती है और मिथ्यात्व तो है वहां पर, तब उसको दोबारा उनका उपशम हो सकता है। तो इनके तीनों का एक साथ उपशम करता है तो सात का हो जाएगा, इसलिए परिभाषा में पांच या सात प्रकृति का उपशम ऐसा कहते हैं। तो जब जब सम्यक तो होता है प्रथम उपशम सम्यक तो उसके पहले पांच लब्धि होती है, उनके नाम है क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। क्षोपशम लब्धि में हमने देखा था कि ज्ञानावरणादि समस्त प्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता रहता है। विशुद्धि लब्धि में हमने देखा था कि मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय सब मंद होने के कारण जीव के शुभ परिणाम होते हैं और उस शुभ परिणाम के निमित्त से शुभ प्रकृतियां बनती रहती है, उसको विशुद्धि लब्धि कहा था। देशना लब्धि हमने देखा था, देशना उपदेश को कहते हैं और वो उपदेश मोक्ष मार्ग संबंधी जीव के स्वरूप संबंधी छह द्रव्य सात तत्व मोक्ष मार्ग स्वप्रभेद विज्ञान हे गे उपादे तत्व देवगुरु शास्त्र का स्वरूप और अन्य भी जो कोई सर्वज्ञता है निमित्त उपादान है निश्चय व्यवहार है आदि संबंधी जो उपदेश होता है और उसमें भी एक कंडीशन है कि ज्ञानी के द्वारा वो उपदेश होना चाहिए। इस तरह से जब ये उपदेश मिलता है और जीव उसको समझता है सुनता है समझता है याद रखता है उस पर बारंबार विचार करता है तब उसके देशना लब्धि कहलाती है। देशना लब्धि के बाद या उसके साथ साथ जीव तत्व विचार में मग्न होता रहता है तो वो तत्व विचार के काल में उसके कर्मों में कितने ही परिवर्तन हो जाते हैं उसको यहाँ प्रायोग्य लब्धि कहा है। प्रायोग्य लब्धि में क्या क्या होता है हमने देखा है। जीव के तो मंद कषाय चल रहे हैं, क्यों? तत्व विचार कर रहा है, वस्तु स्वरूप संबंधी विचार चल रहे हैं, तो उस परिणाम शुभ है और उससे शुभतर हो गए, उससे और शुभतर हो गए, यानी मंदता की ओर वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। उसके कारण कर्मों में क्या क्या बातें होती है हमने देखा था कल, प्रायोगिक लब्धि में आते ही शुरू में पहले ही अंतर्मुहूर्त में क्या होता है, तो अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की जो कर्मों की स्थिति पड़ी है, आयु कर्म के छोड़कर उसके अलावा अन्य सातों ही कर्मों में, भले वो पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो, सबकी स्थिति घट जाती है और अंतः कोड़ाकोड़ी सागर रह जाती है। स्थिति का यह घटना कौन से प्रोसेस द्वारा होता है मनीष भाई? ये स्थिति घट जाती है ना, अंत कोड़ाकोड़ी रह जाती है, ऐसा क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, उसका नाम हमने कल देखा था। हाँ, बोर्ड पर है ना।
हाँ,
स्थिति कांडक घात, उसका स्वरूप भी हमने देखा था। अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के जो निषेक है, एक एक समय में एक एक निषेक, उनकी स्थिति एक अंतर्मुहूर्त में घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है, यानी एक कोड़ाकोड़ी सागर से भी कम स्थिति रह जाती है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की ये बात है। स्थिति के बाद देखिए हमने अनुभाग में क्या होता होगा, तो अनुभाग दो प्रकार की प्रकृति अभी हमारे पास, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। पाप प्रकृतियों का यानी जिसको कहते हैं अप्रशस्त प्रकृतियां, घाती सभी और अघाती की सभी अप्रशस्त, इनके अनुभाग में क्या हो जाता है, तो उसका अनंत वा भाग रह जाता है, अनंत बहुभाग का घात होता है। कौन से प्रोसेस द्वारा? अनुभाग कांडक घात। हमने देखा था चार चार प्रकार के स्पर्धक है, उसमें से अति तीव्र वाले घाती कर्मों के शैल और अस्थि वाले अनुभाग स्पर्धकों का नाश होकर वे ही परमाणु कम अनुभाग वाले हो जाते हैं, लता और दारू रूप होते हैं, और अघाती में जो अप्रशस्त है, विष और हलाहल टाइप के जो है, उनका अनुभाग घटकर नीम और कांजीर रूप हो जाता है। ये अप्रशस्तों में उसका अनुभाग घटता है, उसको कहा अनुभाग कांडक घात। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में तो इतना परिवर्तन होता है, प्रायोगिक लब्धि में आते ही एक स्थिति कांडक घात द्वारा इतनी स्थिति घट जाती, एक बार ही हुआ है अभी, शुरू में जो स्थिति कांडक घात हुआ उसके द्वारा स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी की हुई, और अनुभाग कांडक का द्वारा अनुभाग दो दो स्थान का रह गया अप्रशस्त में, प्रशस्त में चार प्रकार का अनुभाग वो तो रहेगा ही। अब वहां नया बंध भी हो रहा है, उसकी क्या बात है, उससे क्या क्या होता है? तो जो नया बंध हो रहा है उसमें स्थिति का बंध लगातार घटते चला जाता है, उसका नाम क्या देखा था हमने नलिनी बेन? स्थिति बंध जितना है उससे कम होगा, फिर उतना रहेगा, फिर घटती होगी। हाँ हाँ बोलो, बहुत अच्छा, स्थिति बंधापसरण। आप तो एकदम स्पेशलिस्ट जैसे, ना अच्छी बात है, क्योंकि स्थिति बंध का अपसरण यानी घटना, स्थिति बंधापसरण ये प्रोसेस का नाम है, स्थिति बंधापसरण। वो लगातार एक एक अंतर्मुहूर्त मुहूर्त में घटता 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 चला जाता है। 700 से 800 सागर इतनी स्थिति बंध में कम हो जाए, घटौती होगी, इतना कम स्थिति बंधने लगेगी, तब जाके विशिष्ट प्रकृति का बंध रुक जाता है, फिर दोबारा स्थिति बंधापसरण होते रहते हैं, हजारों हजारों होते हैं, तब जाके 700-800 सागर की स्थिति और कट हो गई, तो तब दूसरी बार प्रकृति बंध रुक गया, कोई अन्य प्रकृति का बंध रुक गया। ऐसे 34 स्थान हमने देखे थे, और उस क्रम से कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुकता है उसको भी देखा था। जैसे पहले हमने नरकायु, फिर तिर्यंचायु, फिर मनुष्यायु, फिर देवायु, पांचवें स्थान पर नरगति नरगत्यानुपूर्वी, फिर छठे स्थान से वो एकेंद्रीय संबंधी सूक्ष्म अपर्याप्त वगैरह वगैरह, कल हमने लिस्ट देखी थी। ऐसे 34 स्थान है, यानी उसमें स्थिति बंधापसरण भी चलता रहता है और प्रकृति बंधापसरण भी चलता रहता है। इस तरह से हमने ये चार प्रोसेस जो है वो कल देखे थे विस्तार से। ये भी बात देखी थी कि प्रायोगिक लब्धि तक तो भव्य और अभव्य दोनों ही आ सकते हैं, परंतु जो स्वशुद्धात्म सन्मुख होगा उसी के करण लब्धि प्रकट होती है और उसको सम्यक तो होता ही है। और भव्य भी यहां तक आकर आगे का उसका पुरुषार्थ रह जाता है, और थोड़ा तत्व विचार करा, थोड़ा अभ्यास किया और फिर उसमें उतने ही मात्र से संतुष्ट होकर अन्य कार्यों में लग जाता है या अन्य विचारों में चढ़ जाता है, तो उसके आगे का कार्य नहीं होता। अभव्य तो इससे आगे करण लब्धि तक नहीं जा सकता, परंतु प्रायोगिक लब्धि में जो कोई यहां कर्मों में वेरिएशन हुई है वे उसके भी हो सकती है। यहां जो पाप प्रकृतियों का बंध रुक गया है वो अंतर्मूर्त के लिए रुक गया है, कायम के लिए नहीं। फिर अन्य विचार, अन्य राग द्वेष होते रहते हैं तो दोबारा उन सब का बंध शुरू हो जाता है। तो यहां तक हमने अभी बात देखी थी, अब इसके आगे जो अपने आत्मा में एकाग्र होकर उसी में तद्रूप होकर परिणमन करता है, ये तत्व विचार के काल में ही होता है। तत्व निर्णय करते करते, तत्व विचार करते करते ये सहज होता है। ऐसा नहीं कि अभी हमको उपयोग बाहर चल रहा है उसको अंदर खींचना है, सबको जानना बंद करना है, ये ऐसी बातें नहीं है। तो आगे के जो परिणाम है उसमें क्या होता है, जीव की विशुद्धि और बहुत तेजी से बढ़ती है। जीव में तो परिणामों में इतना ही होता है, क्या है, विशुद्धि बहुत 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 बढ़ रही है। उसके कारण कर्मों में जो कोई परिवर्तन होते हैं और अन्य अन्य जीवों में जो कोई उनके परिणामों में जो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी हो सकती है अकॉर्डिंगली उसको नाम दिए गए हैं। यहां इनको करण लब्धि कहेंगे पहले में पहले, और उसमें भी तीन भेद करेंगे, उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा। 108 पृष्ठ हिंदी में, गुजराती 105 होना चाहिए। करण परिणाम को कहते हैं, जहां तक हमको पढ़ा था उसके आगे मिला, कौन सा नंबर है, 105,
हाँ
पांचवा पैराग्राफ। देखो ये करण लब्धि है ना, पहले में पहले हम देखते हैं, करण शब्द सुना है पहले कभी, हाँ करण यानी परिणाम। और कोई करण का ना अर्थ मालूम है आपको, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। हाँ कर्ता कर्म करण जिसको कहते हैं, उस वहां करण का अर्थ क्या है,
साधन।
तृतीय विभक्ति लगती है ना, उसने किया या इस साधन से किया, तो ये करण कारक भी कहते हैं उसको। और क्या है, करण नहीं, करण कान के लिए तो हम करण कहते, करण।
वो
करता है तो करता कहा, वो करण आया ना उसमें, कर्ता कर्म करण, वो साधन के अर्थ में। करण इंद्रियों को भी कहते हैं, मन को क्या कहते हैं, अंतःकरण, अंदर वाला करण। ये बाह्य तो इंद्रिया पांच है, अंदर वाली इंद्रिया कौन सी है, उसको अंतःकरण कहते हैं, हम अंतःकरण पूर्वक कहते हैं। माफी मांगते हैं, सोच समझ कर गलती करते हैं और अंतःकरण पूर्वक माफी मांगते हैं। देखो अभी यहाँ क्या अर्थ लेना है, करण परिणाम को कहते हैं, पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिंगत होती जाती है, प्रति समय बढ़ती चली जाती है। चारों गति के और त्रिकालवर्ती समस्त जीव, देखो क्या कहना चाहते हैं, केवली भगवान ने इन परिणामों को जाना है कि नहीं जाना, जो जो जीव प्रथमोपशम सम्यक्त के सन्मुख है जिसको हम करण लब्धि के परिणाम कहते हैं, उपशम सम्यक्त होने के अंतर्मूर्त काल पहले जीवों में किस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, उनके परिणामों की क्या पोजीशन है, कितनी डिग्री में परिणाम हो रहे हैं, उसको केवली भगवान ने जाना है। कौन से जीवों को जाना, वर्तमान के जाना कि भूतकाल के, भविष्यकाल के, तीनों काल के। कितने जीव हो गए उपशम समय तो प्राप्त करने वाले, तीनों काल के जीव कितने हो गए, अनंत हो गए। एट ए टाइम भले कम जीव है परंतु तीनों कालों की अपेक्षा बात करेंगे तो अनंत जीव इसको प्राप्त करते हैं। तो वो अनंत जीव अपने अपने काल में, उन्होंने करण लब्धि में प्रवेश किया, पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा समय है, तो वहां उन सभी जीवों के परिणाम कैसे कैसे है ये केवली भगवान तो युगपत जान रहे हैं। देखो क्रिकेट की मैच चलती है ना, ये तो हमें यहाँ तो सबको क्रिकेट तो देखा है कभी ना कभी, नहीं देखा? नहीं देखा, सुनो फिर समझ में तो आवे ऐसी बात है। तो वहां क्या कमेंट्री चलती है, सामने कोई एक मैच चल रही है और उसी समय कंपैरिजन करते कि अमुक इस साल में उन्होंने मैच खेली थी, उनका स्कोर इतना हुआ था, पहली ओवर में इतना स्कोर अभी हो रहा है, और लास्ट ईयर उन्होंने इतना किया था, 10 साल पहले इतना किया था, अब तक का रिकॉर्ड ये है, बताते कि नहीं बताते? कौन सा बताते, भूतकाल का कि भविष्य काल का? अरे भविष्य का कैसे बताएंगे, भूतकाल का। परंतु केवली भगवान क्या जानेंगे, पहले समय में इस जीव की इतनी विशुद्धि थी, दूसरे एक्स नंबर वाला कोई है उसकी इतनी विशुद्धि थी, भूतकाल में किसी ने किया तो इतनी विशुद्धि थी, भविष्य काल में इतनी, तो उनके जितने पॉसिबल परिणाम है, पहले समय के पॉसिबल परिणाम, दूसरे समय के, तीसरे समय के, वेरिएशन तो होगी उसमें, तो वो सब एक समय में जानते हैं। अब इन जीवों के परिणामों में जो तरतमता है, कम अधिकता है, उसके अनुसार इन करण परिणामों को नाम दिए हैं। एक ही जीव की अपेक्षा बात करनी है तो क्या है, जो पहला समय का परिणाम है उससे दूसरे समय में विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है, तीसरे समय में अनंत गुणी, चौथे समय अनंत गुणी, विशुद्धि का स्टीप राइज है, जैसे बुखार चढ़ता है ना तो थर्मामीटर का एकदम वो पारा बहुत फास्ट चढ़ता है ऊपर, ऐसे इनकी विशुद्धि एकदम स्टीप राइज हो रही है। परंतु एक जीव की अपेक्षा नहीं, अनेक अनेक अन्य अन्य जीवों के परिणामों में क्या विविधता वेरिएशन हो सकती है, उसके निमित्त से उस कंपैरिजन में यहां ये नाम दिए, तो यहां तीन नाम है अलग अलग, उसको हम देखते हैं। फिर ये वाक्य पढ़ेंगे, चारों गति के और त्रिकालवर्ती समस्त जीव की जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, उन जीवों के परिणामों की तुलना करने पर, ये कंपेरेटिव स्टडी है सबकी, तुलना करने पर उनमें तीन प्रकार पाए जाते हैं। देखो केवली भगवान तो सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, अनंत जीवों के अनादि अनंत काल के प्रति समय के परिणामों को वे एक साथ जानते हैं, नॉट ओनली जीवों के, पुद्गलों के भी जानेंगे, बाकी सभी छह द्रव्यों के जानेंगे कि नहीं जानेंगे? पूर्व में जिन जीवों ने करण लब्धि के परिणाम किए थे, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में जो जीव करेंगे, उन सभी जीवों के परिणामों को केवली भगवान युगपत जानते, एट अ टाइम, एक समय में, एक साथ। प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है। करण लब्धि में आते ही, करण लब्धि एक अंतर्मूर्त की है, उसमें आते ही उस जीव का जितना परिणाम है, दूसरे समय में उसी जीव का वो परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होता है। यानी कषाय इतने मंद 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 हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं विशुद्धि। तो विशुद्धि कितनी बढ़ रही है, पहले से दूसरे समय में अनंत गुणे, उसको हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे, तो जितने पहले समय में है दूसरे समय में उससे अनंत गुणा, तीसरे में उससे भी अनंत गुणा, चौथे समय में उससे भी अनंत गुणा, ऐसे लगातार चलेगा। परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा, देखो हम परीक्षा देते हैं, 100 आउट ऑफ कितने कितने मार्क्स मिले, 50 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100, ऐसा होते है ना वेरिएशन, तो ऐसा हो सकता है ना 99 या 100 किस किस को मिले, तो 10 स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मिले, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो 90 मिलने वाले कोई अन्य और स्टूडेंट्स होंगे, 80 वाले और कितने होंगे, एक साथ 2 लाख भी विद्यार्थी बैठेंगे तो वेरिएशन कितने होंगे मार्कों के, बोलो उषा बेन, हाँ कितने मार्क्स हो सकते हैं किसी को?
100।
हाँ वेरिएशंस कितने हो सकते हैं?
100।
हाँ
100
हो गए क्या? अरे 0 भी हो गए कि नहीं किसी को? जीरो होगा, कोई किसी को एक मार्क होगा, किसी को दो मार्क होगा, किसी को हंड्रेड होगे, बराबर है कि नहीं? तो 200,000 भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे और 100 में से मार्क्स है तो वेरिएशन 101 हो गए। अब यहां अनंत जीव करण लब्धि परिणाम मान रहे हैं, उनमें कितने वेरिएशंस होते हैं वो अभी हम देखेंगे। ख्याल आए ना? अनंत में अनंत वेरिएशंस नहीं होंगे, उसकी जो कोई रेंज है परिणामों की उसको भी बताएंगे। तो उनके जीवों के परिणामों की समानता या असमानता उसकी अपेक्षा इन परिणामों के, यानी जो करण लब्धि के सभी परिणाम है अंतर्मूर तक के, उसमें 3 डिविजन्स की उन्होंने तुलनात्मक स्टडी की अपेक्षा से। उसके नाम क्या है? अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। हम इसका अर्थ बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं, ये शब्दों का क्या अर्थ है और वो कैसे कैसे परिणामों में समानता या असमानता होती है उसको देखेंगे। इस प्रकार यहाँ तो इस जो ये लेक्चर है या जो चैप्टर है उसमें तो कौन सा परिणाम है उसमें मोटे तौर पर कौन सी बातें होती है लिया है, फिर एक एक अध प्रवृत्त वगैरह को फिर दोबारा समझाया है। पहले तीनों को मिलकर सामान्य कथन देखेंगे, फिर एक एक की विशेष विस्तार से बात करेंगे। इस प्रकार 4 लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग, क्या कहा? पहले तो तत्व विचार कर रहा था, अब सहजी उसका उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगता है तब क्रम से अधक प्रवृत्त करण, अर्थात उसी का दूसरा नाम है अधक करण, अधक करण कहो या अधक प्रवृत्त करण कहो एक ही बात है, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं, इसे करण लब्धि कहते हैं। ये क्रम से ये तीनों ही होते हैं। एक जीव की अपेक्षा क्या होता है? उसके परिणाम अनंत गुना विशुद्ध 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 हो रहे हैं। 2 जीवों की अपेक्षा, अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? ये अधिक प्रवृत्तकरण नाम का जो प्रोसेस है या पहला जो अंतर्मूर्त है उसमें जीवों के परिणामों में कैसी कैसी बातें होती है, बीच वाले में कैसी है, फिर ऊपर की कैसी, वो बताएंगे यहां पर। करण लब्धि का काल एक अंतर्मूर्त होता है, तीनों करणों का काल भी अपना अपना एक एक अंतर्मूर्त होता है, तथापि अनिवृत्तिकरण का काल सबसे अल्प है, जो तीसरे नंबर का करण है वो काल छोटा है, अपूर्वकरण का काल उससे संख्यात गुना बड़ा है, मान लेते उससे 2 गुना है, और अधकरण का काल उससे भी संख्यात गुना बड़ा है, यानी अध प्रवृत्त काल बड़ा है उससे अपूर्वकरण का काल छोटा और अनिवृत्तिकरण का काल और छोटा, अपना अपना तीनों का अंतर्मूर्त और सब मिलकर भी अंतर्मूर्त। हमने तो देखा 5 लब्धि मिलकर भी अंतर्मूर्त यथा योग्य अंतर्मूर्त। सर्वप्रथम तीनों करणों का स्वरूप एवं विशेषता देखकर पश्चात उस पर सविस्तार चर्चा करेंगे। अब ये अध प्रवृत्त करण क्या है उसको देखते हैं। यहाँ जीवों की क्या क्या बातें होती है, जीवों की तो विशेष विशुद्धि बढ़ती है तो कर्मों में क्या होता है उसको भी देखेंगे। अध प्रवृत्त करण मानकर जिसे अधिक समय हुए है ये पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसका विस्तार देखेंगे। अधक प्रवृत्तकरण एक अंतर्मूर्त का है, यानी उसमें असंख्यात समय होंगे, जैसे आपके एकदम रेस चालू हो जाती है ना, दौड़ना शुरू करते हैं तो एक सेकंड में कितना गए वो और दूसरा एक सेकंड में और कहां कितना पहुंचा है, ऐसे जैसे हम देखेंगे। तो यहां क्या कहते हैं, अधक प्रवृत्तकरण मानकर जिसे अधिक समय हुए है ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, मान लेते हैं कि जिसको चौथा समय अभी है अधिक प्रवृत्तन शुरू करके जो चौथे समय में है ऐसे किसी जीव के परिणाम, और अधिक प्रवृत्तकरण मानकर थोड़े ही समय हुए है ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, यानी कोई अभी पहले या दूसरे समय में है, ऐसे जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। संख्या और विशुद्धता यानी उनकी विशुद्धता समान हो सकती है, तो आसान है। और संख्या यानी कितने जीव उसको कर रहे हैं, उनमें भी समानता हो सकती है। ये हम एग्जाम्पल लेके बाद में देखेंगे, इसके सारे चार्ट्स लेके समझेंगे। इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथे पांचवें समय का कोई जीव है और उसकी विशुद्धि पहले दूसरे किसी जीव के समान है, ये बात समझ में आती है? प्रत्येक जीव अभी अपूर्व अध प्रवृत्त करण में आया है, तो लगातार प्रत्येक समय में उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। अब मान लेते हैं कि किसी की विशुद्धि अभी x थी और फिर वो x में अभी हम वो दो गुना तीन गुना ऐसा समझेंगे, अनंत गुना होती है पर दो गुना तीन गुना चार गुना हुई। अब कोई जो है y वाला, पहले समय में उसका y है तो इट कैन बी 5x के समान हो सकता है उसका, उसके आंकड़े बाद में हम देखेंगे एक साथ। यानी
आप जो बात कर रहे तो जीव अलग अलग जीवों की
अलग अलग जीवों के परिणाम कितने हैं, उसकी कितने डिग्री में उसके मंदता है, विशुद्धि कितनी डिग्री है, तो हर समय बढ़ती है हर एक जीव की। तो अभी हम चौथे के बदले हम देखते दसवें समय में जितनी विशुद्धि है उतनी विशुद्धि किसी ने तीसरे समय में कर ली, तो ये ऊपर और नीचे की जो समानता हो सकती है उसको यहाँ अनुकृष्टि कहते हैं। ये नाम से कुछ मतलब नहीं, ऊपर और नीचे की समानता है इतना ही देखा। अध यानी नीचे, अधकरण यानी ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता होना, इसी को अधकरण कहते हैं। हर एक जीव की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ रही है, इतना ही समझना।
हम बोलते थे ना पांच प्रगुण स्थान में भी ऐसे होता है, मगर ये अधकरण तो चौथे के पहले होता है ना?
अधकरण मिथ्यात्व अवस्था में होता है।
सम्यक्त्व के पहले होता है,
पहले होता है।
पांच प्रगुण स्थान की वहाँ बात कहाँ है?
पांचवे समय की बात है, गुणस्थान नहीं, समय। समय मैंने कभी चौथा समय लिया, कभी दसवां समय लिया, समयों की बात चल रही है।
अनंत जो है उसको दस में गिरना, तो पांचवे समय में उसको पचास समय, ऐसे इस तरह से।
देखो यहाँ बाद में हम इसकी संख्या देखेंगे, अभी यहाँ क्या क्या बातें होती है उसको पहले देखेंगे। ये अटपटा लगेगा आपको, परंतु जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारा क्लियर होने वाला है। यहाँ चार आवश्यक होते हैं, किसकी बात चल रही है? अधप्रवृत्तकरण। जीवों के परिणाम कैसे हो रहे? विशुद्ध 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 और अधिक विशुद्ध। उसके कारण कर्मों में क्या बातें होती है? जो नियम से होती ही है उसको कहते आवश्यक है। नियम से होने वाली बातों को आवश्यक कहते हैं, वे इस प्रकार है। यहाँ कौन कौन सी बात? अभी ये करण परिणाम है, जीव ने क्या किया है? अपने स्वशुद्धात्मा के सन्मुख उपयोग उसका लगा है, बस उसी में वो कॉन्सेंट्रेशन है उसका। उस समय क्या हो रहा है? तो कहते विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणा बढ़ती है। प्रति समय, एवरी समय, पहले समय में जितनी विशुद्धि, दूसरे समय में उससे अनंत गुणा, तीसरे समय में उससे अनंत गुणा, चौथे समय में उससे अनंत गुणा, इसको क्या कहते हैं? विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है। अब उस कारण और क्या क्या बातें वहां होती है उसको हम देखे हैं। स्थिति बंधापसरण होता है, जैसे हमने प्रायोगिक लब्धि में भी देखा था। क्या होता है? नया नया जो बंध है वो घटता चला जाता है, तो यहां भी विशुद्धि के कारण नया होने वाला बंध अल्प स्थिति का होते रहता है, तो स्थिति बंधापसरण होता है। प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। स्थिति बंध घटता चला जाता है, उसको क्या कहा? स्थिति बंधापसरण। प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग का क्या होता है? नया बंध की बात है, बहुत बढ़ेगा। कितना? अरे अनंत गुना बढ़ता हुआ। और कहीं कौन से चतुस्थान? चारों ही स्थान। शुभ प्रकृतियों के चार स्थानों के नाम क्या है? नीचे से ऊपर की ओर,
गुड़,
खांड, शर्करा और अमृत। तो ये चारों प्रकार, और पहले समय में जितना अनुभव बंधा ना, दूसरे समय में उससे अनंत गुना, तीसरे समय में उससे अनंत गुना, चौथे समय में उससे भी अनंत गुना, ऐसे लगातार होता चला जाता है। अप्रशस्तों में क्या होता है? अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ और कैसा द्विस्थानगत, दो ही बनते तो है, क्योंकि घाती कर्म तो अभी सभी बन रहे हैं। कौन से हो गए उसमें? लता और दारू, और अघाती में
कांजीर और
नीम और कांजीर। हाँ, क्योंकि क्या है, विशिष्ट अघाती, सॉरी, विशिष्ट अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध तो प्रायोगिक लब्धि में रुका है, कौन सा, वो एकेंद्रीय जाति वगैरह वो नहीं बन रही, फिर भी कुछ प्रकृतियां यहां भी बंधेगी। हाँ, अब जैसे अभी स्थिर अस्थिर वगैरह ऐसी जो कोई है ना, जो ऊपर के गुण स्थानों तक बनती है, ऐसी कुछ प्रकृतियां यहां भी बन रही है, तो उसमें कितना अनुभव बंधेगा? अत्यंत मंद अनुभव बंधेगा, दो स्थान वाला। कौन कौन सी चार बातें हुई? जीव की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है। अनुभाग बंध में दो प्रकार से बताना पड़ता है, स्थिति बंध का घटना पुण्य प्रकृति में भी होता है और पाप प्रकृतियों में भी होता है, नया बंध। अनुभाग में दो वेरिएशन है, पुण्य प्रकृति का अनुभाग अनंत गुणा बढ़ता हुआ और चार स्थान वाला, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता हुआ और दो स्थान वाला, ये चार बातें यहाँ पर होती है। देख बोलो,
लगा क्वेश्चन मेरे फेस पर।
हाँ,
तो इसमें वही हुआ जो अभी हमने
प्रायोगिक लब्धि में, आपका प्रश्न है, यहाँ तो वही हुआ ना जो प्रायोगिक लब्धि में हुआ था। तो प्रायोगिक लब्धि में हमने क्या क्या देखा था? प्रकृति बंधापसरण भी हुए थे। एक डिफरेंस और है, वहाँ एक बड़ा स्थिति कांडक घात हुआ था और एक बड़ा अनुभाग कांडक घात हुआ था, तो सत्ता में पड़े थे। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर कांडक घात नहीं हो रहे हैं, अपूर्व करण में जाके लगातार कांडक घात होते चले जाएंगे। यहाँ तो विशुद्धि बढ़ रही है, स्थिति बंधापसरण जो पहले से चल रहा था यहाँ भी चल रहा है, अनुभाग के बंध में पुण्य में और पाप में जो वेरिएशन है वो हो रहा है।
तो सत्ता में पड़े उसका कुछ नहीं हो रहा है,
सत्ता में पड़े हुए उसका जो अनुभाग, उसकी अभी यहाँ बात नहीं ले, यानी उसमें जो कांडक घात वगैरह नहीं, वो सामान्य अपकर्षण वगैरह वो चलेगा। ये मेन मेन बातें तो यहाँ बताई, क्योंकि जब जितना सत्ता में है उससे बंध जब कम होता है तो वो तो नीचे से तो नीचे गलते ही चले जाते, तो उसकी स्थिति तो एक एक समय से तो गलती ही चली जाती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग विशुद्धि है वहां पर। देखो, क्योंकि हमने देखे ना कितने ही जीव इसको प्राप्त करते, तिर्यंच भी प्राप्त करते प्रथमोपशम सम्यक को, नारकी भी प्राप्त करते हैं, मनुष्य भी और देव भी, और हरेक की अपनी अपनी रेंज ऑफ विशुद्धि अलग अलग हो सकती है। तो किसी का स्टार्टिंग पॉइंट में ही ज्यादा विशुद्धि होगी, किसी की कम, परंतु जाकर अनिवृत्तिकरण में सबके समान हो जाती है।
अच्छा।
इसीलिए यहाँ पर जो वेरिएशन है स्टार्टिंग में, उसकी अपेक्षा यहाँ नाम अलग बताए। तो अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण है। हमने देखा 2,00,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं और उनके मार्क देखेंगे तो हमने कितने देखे, 100 में से कितने वेरिएशन, 101। 2,00,000 विद्यार्थियों के 2,00,000 वेरिएशन नहीं होते हैं, ख्याल है ना। ऐसे यहाँ अनंत जीव अधप्रवृत्त करण मान रहे हैं, उनके परिणामों के वेरिएशंस कितने हो सकते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण। ये असंख्यात लोक क्या होता है, एक लोक में कितने प्रदेश है, ये संख्या बताने का नाप है। एक लोकाकाश में प्रदेश कितने हैं, बोलो, असंख्यात, जिसको हम एक लोक कहेंगे। जैसे मान लेते एक कटोरी में 1,000 चावल है, और हमें 10,000 चावल बताने हैं, तुम क्या कहेंगे?
10 कटोरी।
ऐसे ही एक लोक में जितने असंख्यात है उसको असंख्यात से गुणा करो, यानी एक लोक, दो लोक, 10 लोक, लाख लोक, करोड़ लोक, ऐसे कितने असंख्यात लोक, तो उसमें प्रदेशों की जितनी संख्या है उतने यहाँ परिणामों के वेरिएशंस है, उसको कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण, परिणामों के विशुद्धि के भेद है।
विशुद्ध
केवली तो सबको जानते हैं। ये जीव कितने हैं करने वाले? अनंत, क्योंकि 3 काल के लिए है, परंतु उनके परिणामों के वेरिएशंस कितने हैं? असंख्यात लोक। तो लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश है उस संख्या को एक लोक कहते हैं, और उसे सहनानी या चिन्ह द्वारा बताना हो, यानी इसकी ये तो सिंबल है, इस तरह से उसको लिखते हैं 3 आड़ी लाइन, इसको संदृष्टि कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, सिंबल कहेंगे, ऐसा बताते हैं। ऐसे एक लोक, दो लोक, 3 लोक, करोड़ लोक, असंख्यात लोक बताने के लिए ये लोक के आगे वो अंग्रेजी ए टाइप लिखा ना, उसका ये असंख्यात का साइन है, तो असंख्यात राइट साइड को लिखा है और लोक लेफ्ट साइड को। क्यों? अंक ऐसे ही पढ़ते हैं, नहीं समझे? 42 कैसे लिखते हो? 2 कहाँ आया? राइट साइड को, 2 को पहले, 42 44 56 पहले 6 लिखते फिर 5 लिखते है ना?
नहीं,
नहीं राइट साइड से। और कह अच्छा लिखते हैं पहले 5 और बाद में 6 और पढ़ते हैं 56। तो अंका नाम वामतो गति, यानी वो अंकों को राइट से लेफ्ट को पढ़ा जाता है,
उर्दू की तरह।
उर्दू की तरह हम अक्षर यहाँ से लेफ्ट से राइट को पढ़ते हैं, और जो अंक जो है तो लास्ट में जाने वाला है वो राइट साइड को लिखते हैं, इस तरह से पढ़ते राइट से लेफ्ट की ओर। 58 कोई भी अंक ले लो, 71 हाँ क्या पहले 1 18 पहले 8 फिर 1 है ना? तो ऐसे यहाँ असंख्यात लोक, इसको पढ़ना कैसे? असंख्यात लोक, जैसे हम पढ़ते समय 56 पढ़ते हैं, लिखते समय पहले 5 बाद में 6, ऐसे यहाँ लिखते समय पहले लोक लिखा बाद में असंख्यात लिखा, अच्छा। उसको पढ़ेंगे कैसे? असंख्यात लोक। अभी इतना ही चिन्ह दिया है और कुछ यहाँ ज्यादा नहीं दिया, ज्यादा चिन्ह देखने तो वो संदृष्टि अधिकार है, अभी आपके पास आया ना दूसरा भाग का सम्यक ज्ञान चंद्र का,
वो देख के बंद कर दे
वो देख के देखो अपना साइंस कितना डेवलप था उस जमाने में, ये सारे कैलकुलस है या जो कोई लॉग है, लॉग में तो खाली लॉग 2 ही है, हमारे यहाँ सब लॉग अलग अलग टाइप के, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 10 कुछ भी, और उसके सारे फॉर्मूले है मूल प्राकृत में, ऐसे हमें लगता है कि आजकल ये सारे टेक्निक बात आ गई बाहर, ऐसा नहीं है।
प्राकृत के सिंबल है,
हाँ है उसके प्राकृत
ओरिजिन, भाषा के सिंबल है,
सिंबल्स में तो कोई भाषा नहीं लगती, सिंबल तो सिंबल है, ऐसे जैसे हमने फ्लावर की साइन की,
हाँ।
वो कौन सी भाषा की है? वो किसी भी भाषा की हो सकती है, हाँ। तो ये असंख्यात लोक, ये यही लिखा है यहाँ भी अर्थ संदृष्टि की। अब हम आगे का पढ़ते हैं अपूर्वकरण, ये अदब प्रवृत्त करण पर हम दोबारा आने वाले हैं, अभी तो उसमें हमने इतना ही देखा, अनंत जीव हो तो भी उसके असंख्यात लोक प्रमाण, उसके परिणाम होते हैं अलग अलग, उसमें 4 बातें होती है, विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है, अनुभाग के बंध में 2 वेरिएशंस होते हैं, पुण्य का अनुभाग बढ़ता हुआ 4 स्थान वाला, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता हुआ 2 स्थान वाला। अब अपूर्वकरण में क्या होता है उसको देखते हैं। अपूर्व यानी पूर्व में नहीं हुआ था ऐसा अपूर्व अपूर्व परिणाम होता है, यहाँ समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं, नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। क्या कहते हैं? पहले जो हमने देखा था मान लेते हैं अधकरण जो है वो 16 समयों का है, मान लेते हैं, होता तो असंख्यात समयों का, तो 16 समयों में 4 समयों तक समानता हो सकती है। किसी जीव के चौथे समय में जो परिणाम है अन्य किसी जीव के तीसरे समय में हो सकते हैं, अन्य किसी जीव के दूसरे समय में, अन्य किसी जीव के पहले समय में, तो इतनी वेरिएशंस वहां हो सकती है। अब अपूर्वकरण में क्या है, किसी भी दो अलग अलग समयों के जीवों के परिणाम समान नहीं होंगे, परंतु एक ही समय की विशिष्ट रेंज होगी, उस रेंज में किसी के परिणाम कम ज्यादा होंगे। एक ही समय के परिणामों में समानता भी होगी असमानता भी हो सकती है, परंतु कोई भी पहले समय का परिणाम किसी भी दूसरे तीसरे चौथे समय के परिणाम के समान नहीं होगा, परंतु एक समय में वेरिएशन हो सकती है या समानता भी हो सकती है, इसको कहेंगे अपूर्वकरण। जब जाके अनिवृत्तिकरण की बात करेंगे, प्रत्येक समय का परिणाम एक सरीखा अनंत जीवों का। अब यहाँ हम अपूर्वकरण को देख रहे हैं, पहले में पहले गुणस्थान को भी नाम है और ये करण परिणामों की भी नाम है, क्योंकि वहां पर जो श्रेणी चढ़ता है ना वहां पर भी करण परिणाम होते हैं, और वहां तो उस करण परिणामों को गुणस्थान ही अलग बना दिया है, वहां भी ऐसे ही परिणाम होते हैं। कैसे, ये गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांड घात, वहां भी ये प्रोसेस होते हैं, परंतु वहां तो गुणस्थान को ही उस नाम से बता दिया, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण।
तो सातवें में भी अधकरण होता है ना?
हाँ,
तो वो सेम वे
कहाँ पर,
सातवें गुणस्थान में।
हाँ, सातवें गुणस्थान में, ये जो श्रेणी के सन्मुख होने वाला जो अधकरण होता है वो सातवें में होता है, ये यही प्रोसेस का नाम यही है। देखो जब जब सम्यक तो होता है, सम्यक दर्शन होता है प्रथम उपशम समय, तो ये तीन करण परिणाम होते, इसको कहते हैं तीन करण परिणाम। कर्णानियोग कभी भी नहीं कहेगा शुद्धोपयोग हो रहा है, कर्णानियोग में विशुद्धि बढ़ती है तो कहेंगे तीन करण परिणाम मांडे। जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन या क्षायिक सम्यक्त्व का प्रोसेस चलेगा, श्रेणी के सन्मुख जीव होगा, जब जब तीन करण परिणाम होंगे उन परिणामों के नाम ऐसे ही है। परंतु यहां मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में आते हुए जो परिणाम है उससे वो श्रेणी वाले परिणाम बहुत अनंत गुणा ज्यादा हो गए विशुद्ध, परंतु उसकी क्वालिटी क्या, ऊपर नीचे के जीवों में समानता, ये तो दोनों में कॉमन है ना, नहीं समझे। देखो यहां कंपैरिजन किस में हो रही है, जो जीव अभी सम्यक तो प्राप्त कर रहे हैं, जब करण लब्धि में आए हैं, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे अलग अलग समयों के जीवों के विशुद्धि में समानता हो सकती है। अब अपूर्वकरण में आए, अब ऊपर नीचे के समयों में समानता नहीं होगी, परंतु एक ही समय में जो कोई रेंज होगी परिणामों की उसमें समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते, ये बात है। यहां पर हम पढ़ेंगे तो और ख्याल आएगा। देखो यहां तो बिल्कुल शॉर्ट में लिया है, आगे चलकर विस्तार से प्रत्येक को लेना है हमको।
तो अपूर्व करण का अपन देखते हैं तो समय एक ही समय में
रेंज है,
उसकी
रेंज
है, समय इज दिस टाइम,
उस समय में अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, परंतु पहले समय का कोई उत्कृष्ट भी परिणाम उससे दूसरे समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुना ज्यादा होगा, वहां कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। सिमिलैरिटी कहां हो सकती है, एक ही समय में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसकी विशिष्ट रेंज होगी। अब यहां क्या क्या बातें होती है, तो यहां तो मूल में बताया कि ऊपर और नीचे के जीवों के जो है गुण समयों के उसमें समानता नहीं है, तो अधप्रवृत्त में जो चार आवश्यक देखे ना, अभी अभी देखे ना हमने, अनंत गुणा विशुद्धि का होना, स्थितिबंध अपसरण, पुण्य प्रकृतियों में अनंत गुणा अनुभाग बढ़ता हुआ और अप्रशस्त में घटता हुआ, वो बात यहां भी चल रही है। इन एडिशन क्या होता है यहां पर, उसके साथ साथ यहां चार आवश्यक और होते, और यानी एक्स्ट्रा होते, क्या क्या होता है यहां पर, गुण श्रेणी, ये नाम नए है ना, और उसका अर्थ भी देखेंगे। गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, ये तो नाम हमने सुने हैं। कब हुआ था? एक बड़ा स्थिति कांडक घात प्रायोग लब्धि में आते ही हुआ था। वहां क्या हुआ था? अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति हो गई थी। वहां एक बड़ा अनुभाग कांडक भी हुआ था और सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग अप्रशस्त कर्मों का घट गया था, द्विस्थान का रह गया था। अब यहां बारंबार ये स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक होते जाएंगे, बहुत बार होंगी यहाँ पर,
हर समय
ने एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक कांडक घात होता है। हम अब पढ़ेंगे आगे। अधप्रवृत्तकरण के परिणामों से भी यहाँ के परिणाम असंख्यात लोग गुणा हो जाते हैं। क्या कहा? वहां तो कितनी वेरिएशन थी? असंख्यात गुणा, असंख्यात लोग को असंख्यात गुणा करेंगे, उसको असंख्यात गुण लोग कहते हैं। अब असंख्य एक एक परिणाम है, एक एक कोई वेरिएशन, उसमें से असंख्यात लोग प्रमाण अलग अलग वेरिएशन हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग। वो कैसे होते हैं उसको देखेंगे, अभी तो इतना ही समझना है। अभी वेरिएशंस कितने हैं? जैसे हमने वहां 101 वेरिएशंस देखे थे ना मार्कों के, अब वहां एक मार्क में से और उसके विभाजन कर दो, अपूर्णांक पॉइंट कुछ कर दो, तो इसके और यहां वेरिएशंस हो जाएंगे। उपरोक्त सभी आवश्यकों का सविस्तार स्वरूप हम बाद में देखेंगे, पहले हम तीनों की परिभाषा क्या है और उसमें क्या होता है उसको देखेंगे। और ये जो गुणश्रेणी किसे कहना, गुण संक्रमण किसे कहना, वहां क्या होता है, कौन सी प्रकृति में होता है, उसकी बात हम आगे देखेंगे। अभी अनिवृत्तिकरण को देखें। अनिवृत्तिकरण यहां भी कंपेरिटिव ही नाम है। ये एक एक जीव का परिणाम जो है अधप्रवृत्तकरण से लेकर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण विशुद्धि बढ़ रही है। यहां हम अनेक जीवों के परिणामों की तुलना कर रहे हैं। तो निवृत्ति यानी परिणामों में भेद या असमानता, निवृत्ति का अर्थ क्या है?
परिणामों में भेद,
या भेद है। और अनिवृत्ति यानी भेद नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्येक समय का अपना अपना सुनिश्चित परिणाम सभी जीवों को जो अभी करण लब्धि में आए और अनिवृत्तिकरण में पहुंच गए। तो अनिवृत्ति का अर्थ क्या है? त्रिकालवर्ती, तीनों काल के, भूत भविष्य वर्तमान, नाना जीवों के, नाना यानी अनेक जीवों के, अलग अलग जीवों के परिणामों में समानता। अनंत काल पहले किसी ने ये अनिवृत्तिकरण परिणाम शुरू किया था, कोई वर्तमान में कर रहा है और भविष्य काल में कोई करेगा, अनिवृत्तिकरण परिणाम में आते ही उसकी समान हो जाएगी परिणाम, तीनों काल के जीवों के परिणाम समान उस पोजीशन पर। यहाँ प्रत्येक समय के परिणाम
एंट्री लेवल से रहता है, जब हाँ? वो अनिवृत्तिकरण स्टार्ट करेंगे,
हाँ,
तभी उनका लेवल,
हाँ, अनिवृत्तिकरण के स्टार्टिंग में ही उनकी लेवल समान हो जाती है। फिर अनिवृत्तिकरण के जितने समय है तो असंख्यात, हम मान लेते चार भी समय, तो प्रत्येक समय चार समय तक सभी जीवों के एक एक समय का एक एक ही विशिष्ट परिणाम है, सबका समान है।
समान है विशुद्धि में,
विशुद्धि में समानता है। यहां प्रत्येक समय के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जाते हैं, फिर भी सभी अनंत जीवों के एक एक समय के परिणाम समान पाए जाते हैं। यहां भी आयु बिना शेष सात कर्मों में, यहां भी का अर्थ क्या है? अपूर्व करण से शुरू हुई है वो गुणश्रेणी वगैरह, यहां भी होती है। आयु में कुछ नहीं होता है, अन्य कर्मों में क्या क्या होता है? गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, ये गुणश्रेणी किसे कहते हैं हम देखेंगे बोर्ड पर बाद में, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते हैं। अपूर्वकरण में जो चार बातें शुरू हुई थी वो यहां भी होती है। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत जाने पर, यानी अनिवृत्तिकरण का जो कोई अंतर्मुहूर्त है उसमें मान लेते हमने पांच भाग किए उसके, तो उसमें से चार भाग बीत जाने पर, चार भाग करेंगे तो तीन भाग बीत जाने पर, यानी तीन चौथा भाग बीत जाने पर, थ्री फोर्थ बीत जाने पर, संख्यात भाग बीत जाने पर इसका समझ में आता है ना अर्थ क्या होता है वहां पर? संख्यात बहुभाग बीत जाने पर दर्शन मोनीय कर्म का अंतरकरण और उपशमकरण होता है। अभी तक क्या पोजीशन थी? देखो ये गुण श्रेणी आदि जो है अपकर्षण होगा, ये जो नीचे परमाणु आते रहेंगे ये तो सभी कर्मों में होगा, परंतु अभी यहां दर्शन मोनि में एक विशेषता होने जा रही है। अनादि से पोजीशन क्या थी? हर समय जीव बांध रहा था और सत्ता में सागरों के निषेक पड़े, प्रत्येक समय में एक एक निषेक है ही है और उसका उदय भी चल रहा है और जीव को परिणाम भी होता रहा है, नया बंध भी होता रहा। अनादि से मिथ्यात्व का उदय 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 हर समय, हर समय जीव मिथ्यात्व परिणाम कर रहा है और हर समय नया बंध हो रहा है। अनादि से ये पोजीशन है तो वो सम्यक तो प्राप्त नहीं कर रहा। अभी क्या है उसके तत्व विचार के काल में अपने आत्मा को सन्मुख होकर उसके चल रहे परिणाम, परिणाम विशुद्ध होते चले जाते हैं, तो अभी क्या होता है उसमें लगातार जो दर्शन मोहिनी के निषेक है उसमें बीच में ही गैप तैयार होती है। ये गैप कैसे तैयार होगी? तो वहां के जो निषेक है उसमें से कुछ परमाणु नीचे चले जाएंगे, कुछ सत्ता में पड़े हुए में ऊपर चले जाएंगे, बीच में गैप तैयार हो जाएगी। गैप में मिथ्यात्व के कोई भी परमाणु नहीं रहेंगे। नीचे चले जाते, अभी नीचे उदय चल रहा है, नीचे भी वहां वो हम आगे पोजीशन उसका फिगर वगैरह देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो बीच में अभी गैप हुई है, उसको कहेंगे अंतर किया ना, अंतरकरण, प्रोसेस को करण कहेंगे यहां पर, अंतर कर दिया, गैप तैयार हो गई, उसको कहा अंतरकरण। अब गैप तो तैयार हो गई, नीचे कुछ है निषेक, वो एक एक करके नीचे के निषेक खिर जाएंगे, परंतु ऐसा भी हो सकता है ना ऊपर के निषेक गैप को लांग कर नीचे आ सकते हैं, तो ऊपर के निषेकों को क्या करना, तो उसको है वहीं पर दबे रहना, उसको कहेंगे उपशम किया। यानी अभी पोजीशन क्या है, ऊपर के परमाणुओं को उपशमित करेगा, बीच में गैप है, नीचे कुछ हम समझते दो चार निषेक है वो एक एक करके गल जाएंगे, गल जाएंगे तो गैप वाली पोजीशन आ जाएगी। वहां मिथ्यात्व के कितने परमाणु है? कुछ नहीं है, तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती, पुराना उदय भी नहीं है, जीव मिथ्यात्व कर भी नहीं रहा और नया बंध भी नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहली बार सम्यक तो होता है तो ये पोजीशन बन जाती है, उसको हम देखेंगे, यहाँ फिगर भी होगी, हम देखेंगे पहले इसको पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सब कुछ बताएंगे। हाँ हाँ पहले भी हमने देखा था ना इसमें क्या होता है, अभी इसी के आगे यहाँ फिगर होगी तो आप देख लेना। यहाँ भी आगे है, हाँ देखो 139 पेज है हिंदी में,
36
हाँ 136 होगी, देखा ना जरा, जहाँ द्वितीय स्थिति अंतर और प्रथम स्थिति है, इसे जो लाइंस कितना है 136। हाँ देखो ये दर्शन मोनी के निषेक थे, मान लेते वो अंतर था ना, वहां भी निषेक थे ऐसा इमेजिन करो। अब यहाँ अनिवृत्तिकरण के परिणाम चल रहे जीव के, विशुद्धि परिणाम, तो अनिवृत्तिकरण के पश्चात जो है उदय आने योग्य निषेक, ये जहां गैप दिखाया है नीचे जो लिखा है ना प्रथम स्थिति, तो प्रथम स्थिति के निषेक है वो अनिवृत्ति के काल वाले निषेक है, वहां तक अनिवृत्तिकरण चलेगा, उसके पश्चात जो वहां निषेक थे उसका क्या हुआ, तो एरो से दिखाया है उन निषेकों में से परमाणु कुछ ऊपर चले गए कुछ नीचे आ गए, और वहां क्या हुआ, निषेकों का अभाव हुआ, उसको कहते अंतर हुआ। अब नीचे तीन निषेक लिखे हैं, उसका नाम क्या है, प्रथम स्थिति, मिला प्रेरणा बेन 136 पेज है
हिंदी में,
139
गुजरात में 136।
आपके पास हिंदी है क्या?
हाँ।
मिला कि नहीं मिला?
हाँ,
हाँ। बीच में अंतर है, अंतर वाले निषेकों के परमाणु कुछ नीचे कुछ ऊपर चले गए, वहां अंतर हो गया, नीचे आए हुए उसका क्या होगा, एक समय में एक निषेक खिरता ही है, उदय आ रहा है। अब ये तीन समय में तीन निषेक खिर जाएंगे तो बाद में क्या होगा, वहां पर गैप है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, या यू समय मिथ्यात्व करेगा भी नहीं और नया बंद भी नहीं होगा, तो यहां इस पॉइंट पर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। परंतु जो ऊपर द्वितीय स्थिति लिखा है ना, तो उसमें से परमाणु नीचे आकर उदय में आवे तो कहते उसको उपशमित किया जाता है। उपशम करने ने है वहीं पर बना रहे ना, वो नीचे लॉक किया उसको वहीं पर, उसमें से एक भी परमाणु छूटकर नीचे नहीं आ सकता। कितने काल तक उसको लॉकिंग में रखेंगे, एक अंतर्मुख, क्योंकि उपशम का काल उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको कहेंगे उपशम किया उसका। तो यहां पर मिथ्यात्व के परमाणु उदय में नहीं आएंगे, अनादि से लगातार आ रहे थे तो लगातार जीव मिथ्यात्व भी कर रहा था। अब प्रथम बार ऐसी हो गई पोजीशन, किसके कारण यह अंतर हुआ है और उपशम हुआ है, तत्व विचार करते करते उसमें इतना मग्न हो गया कि उपयोग ने अपने आप को पकड़ लिया, उसको कहते स्वशुद्धात्मा के सन्मुख उपयोग हो गया और उसमें ऐसे अंतर भी हो गया और उपशम भी हो गया और जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई।
जीव को भान होता है उस वक्त,
जीव को जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो भान तो होगा ही ना, हमें दर्द होता है तो आपको अनुभूति होती है कि नहीं, वेदना होती है, और दर्द मिट जाता है तो वो भी पता चलता है। यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, अब तक कभी ऐसा आनंद नहीं उसको आया, ऐसा उसको आता है आनंद, वो तो तत्व विचार में ही मग्न था ना, तो एकदम से उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती तो बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अपने आप को पता नहीं चले, अरे मेरे को हुआ कि नहीं हुआ, यदि इतना भी उसको शंका है तो निशंक कहाँ हुआ वो फोन किया था कि मुझे हुआ कि नहीं बताओ, जिसको शंका है उसको उसको तो सम्यक्त्व के बारे में ही शंका है। वो क्या है, लोग कुछ ना कुछ ऐसे सुनते हैं, कितने ही लोग मिलते, मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में ऊपर एक आकाश में ऐसा मैं हल्का हल्का हुआ हूँ। कोई कहते हैं मुझे दिव्य प्रकाश दिख रहा, कोई ऐसा सफेद सफेद दिव्य प्रकाश, क्योंकि सुना हुआ होता है ना और उनको इमेजिनेशन हो जाता है इसे कि मुझे कुछ ऐसा दिव्य प्रकाश दिख गया है, मैं हल्का हल्का हो गया हूँ, तो ऐसी भ्रांतियां चलती है बहुत सारी।
दिव्य प्रकाश देखा उसने, पुद्गल का अनुभव किया, आत्मा का नहीं
देखा ना कुछ। हाँ। और ये हल्का भारी किसकी पर्याय है, हल्का महसूस होना ये क्या है, ख्याल है ना। तो ऐसे मन से कल्पना में ऐसा हो सकता है,
ये सब अपन बोलते हैं ना, ये कर्मों में ये सब उथल पाथल हो रही है, तो वो अपनी कार्यवर्ती शक्ति से, कर्मों की कार्यवर्ती शक्ति से होती है, ऐसे बोल सकते।
नहीं नहीं, आपको क्रियावती शक्ति कहना है, वो बात नहीं है, क्रियावती शक्ति से हलन चलन होता है, एक जगह से दूसरे जगह में जाना या स्थिर रूप होना। यहाँ क्या हो रहा है, कर्मों की शक्ति ही ना दिख हो रही है,
आलेख से बताया डायग्राम।
अगर आप बोलते हैं ना निषेक ऊपर जाते
हैं, ये ऊपर जाना और नीचे जाना, आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ चले जाए, ऊपर गए, कहाँ ऊपर गए, स्टॉक के पेपर तिजोरी में से नीचे से आपके ग्राउंड में थे रखे हुए तो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, क्या नहीं चले गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वहां भी ऐसे एरो से बताते ना, ये इतना ड्रॉप हुआ था अभी ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट अभी ऊपर चला गया, बताते हैं ना, उसका निर्देशांक बढ़ गया, बढ़ गए ने क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वैल्यू बढ़ गई तो वो तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है, पेपर है, जो कोई आज तो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली है, तो वो बढ़ गए नहीं, उसमें क्या हुआ परिवर्तन। मान लेते आपके पास फिजिकल वो सर्टिफिकेट है उसका, उसकी वैल्यू उस पर लिखी है और आज डिक्लेयर किए ज्यादा हुए, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं है,
भारी नहीं हुआ।
हाँ,
भारी नहीं हुआ,
भारी नहीं हुआ।
पेपर पे आंकड़ा भी बदल नहीं जाता,
बदल नहीं जाता, वो तो वहां पर बदल गया है।
जब आप बोलते हैं ना कर्मानु फिर जाते हैं, माने कर्म का जब निचरा होती है परमाणु फिर जाते हैं,
तो परमाणु का खिर जाना है। हाँ,
तो वहाँ और ऐसे भी लिखा है कि वो कार्मिक वर्गणा सामान्य पुद्गल हो जाता है।
हाँ,
तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग,
देखो पहले कर्म वर्गणा कर्म था यानी क्या था, उसमें फलदान शक्ति थी, उस परमाणु का विशिष्ट रूप से कुछ अवस्था बदली थी ना। जैसे हमारे पास मिट्टी थी और मिट्टी में से वो घड़ा बना तो उसकी कुछ विशिष्ट अवस्था हुई, तो फिर घड़े में से वो किसी ने फोड़ दिया तो क्या हुई, अवस्था क्या हुई, बदल गई, उसके बड़े बड़े पीस हो गए और कालांतर से फिर मिट्टी हो गई। कुछ भी उसका अन्य परिणाम हो, उस मिट्टी में से और कुछ वस्तुएं बनेगी वो बात अलग। ऐसे ही यहां जो कर्मरूप परमाणु थे उदय में आए यानी खिर गए, निर्जरा हुई, तब उसका जो कुछ फल है वो जीव को ज्ञानावरण दर्शनावरण के रूप में जो कुछ फल है वो उसका निमित्त बना जीव के भावों के साथ। अब उन परमाणुओं का क्या होगा, अपने अकर्म हो गए, क्या हो गए, हो सकता है आहार वर्गना में जुड़ जाए, हो सकते परमाणु हो जाए, हो सकते कोई अन्य स्कंद में मिल जाए, उसका अपना अपना जो कोई परिणमन होना है उसकी अपनी योग्यता से होगा। अब दैट इज नो मोर अवर कर्म, भले वो जीव के साथ चिपके हुए वहीं पर पड़े रहेंगे, उसको हम कर्म नहीं कहेंगे।
तो वो इसको सामान्य परमाणु बोल सकते,
परमाणु कहेंगे उसको, और वहीं पर चिपके हुए रहेंगे तो हम कहेंगे वो तो विसर सोपचे कहेंगे, वो चिपके हुए पड़े हैं वहां पर स्निग्ध।
जो ये फल देने की शक्ति है वो खाली कर्म कार्मिक वर्गणा के विशेष,
कार्मिक वर्गणा जब उदय में आती है तभी वो विशिष्ट फल देगी। विशिष्ट में भी आठ हमने प्रकार देखे हैं, वो मात्र कर्म में ही है, कार्मान वर्गणा में भी नहीं है। कार्मान वर्गणा कर्मरूप हो जाती है और वो जो कर्म जब खिरता है तब उसका फल मिलता है, क्योंकि अभी तो अनंत अनंत कर्म परमाणु यहाँ कर्मरूप होकर यहाँ पड़े हैं, सागरों की स्थिति है, जब उदय में आएंगे तब उसका फल मिलेगा। ख्याल है ना, अभी किसकी बात चल रही है यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमने अनंत जीवन के परिणाम समान है अनिवृत्तिकरण में देख रहे हैं, उसका तीसरी लाइन। यहाँ भी आयु बिना शेष सात कर्मों में गुण श्रेणी, गुण ये तो पढ़ा था हमने, उसके आगे
अब
इन तीन कर्णों का स्वरूप विस्तार से देखते हैं। पहले में पहले हमने बिल्कुल स्थूल उसकी परिभाषा देखी, इसमें अनेक नए शब्द पढ़कर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बारंबार सुनने या पढ़ने से हम किसी भी विषय से परिचित हो जाते हैं। ये तो अब ठीक है आगे के। मोना तुमने ही तो बताया था कि रोज तुम रिया को छह द्रव्य सात तत्व इंद्रिया पाप कषाय आदि के नाम सिखाती हो। पांच साल की रिया जब कषाय के नाम बताते हुए क्रोध मान कहकर रुक गई तो पौने दोन साल का सोहम उसकी तोतली भाषा में झट से बोला माया और लोभ। वो तो सिखाते समय वो तो कहीं पर गद्दी पर लेटा लेटा कुछ अपनी धुन में बैठता था, सोता था, कुछ भी करता था, पर बच्चों का तो ध्यान रहता है, सीख जाते हैं बहुत जल्दी। देखो अभी मैं बताती हूँ, पाठशाला लेती है तो चार साल के ये सोहम चार साल का था और बाकी बच्चे बड़े थे थोड़े, और पंद्रह बीस लड़के उसके साथ पढ़ते है तो सब उसको सिखाते दर्शनों उपयोग ज्ञानों की शुद्ध भाषा में, तीन क्या होते हैं समय दर्शन ज्ञान चरित्र होते हैं, चार क्या होते हैं इसे, आठ कर्मों के नाम भी स्पष्ट शुद्ध बोलते हैं, नौ क्या होते हैं, दस क्या होते हैं तो दस धर्मों के नाम, श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं के नाम स्पष्ट शुद्ध, सभी चार चार साल के बच्चे हो या पांच साल के या पंद्रह साल के सभी शुद्ध बोल के बताते हैं। कभी वो बारह प्रकार के क्या होते हैं, अभी पांच में क्या होते हैं, पांच बारह भावना के नाम, बारह तपों के नाम, जैसे अभी पांच संख्या है, पांच संख्या में अलग अलग पांच परमेष्ठी भी है, पांच पाप भी है, पांच भाव भी है, सबके नाम ऐसे याद है, भले अभी रट रहे हैं उसका और डिटेल ख्याल नहीं है परंतु बच्चे सीख जाते हैं।
बड़ों को तकलीफ होती
है,
बड़ों को तकलीफ होती
है, तकलीफ नहीं होती, हमने अपने को इनहिबिशन कर रखा है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं आएगा। इतना ही नहीं बड़े क्या सोचते हैं, अरे ये बच्चों के सामने बातें नहीं करना, वो नहीं समझेंगे, क्यों अपने को अरुचि है ना तो बच्चों को मना करते। हमारे यहाँ रोज के जो स्वाध्याय में आने वाली ऐसी महिला है तो उनकी बहन के लड़के वो माउंट आबू से आने वाले थे और हमारे यहाँ गुणस्थान ये सिखा रहे थे, तो तो बच्चों को बहुत कुछ ये इसमें रुचि थी, तो वो आना चाहते थे, तो उसने मना कर दिया, अरे गुणस्थान क्या समझोगे तुम। तो फिर मैंने उसको समझाया, डांटा जो कुछ उस बहन को, फिर वो बच्चे आने लगे, एक 6 साल की, एक 8 साल की और एक 14 साल का लड़का। उन्होंने इतना गुणस्थान सीखा, और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जब गुणस्थान कहते थे, गुणस्थान वो सब अंग्रेजी में लिख के लेते थे, और इतना बढ़िया उन्होंने सीखा कि उसके बाद एक शिविर भी हुई थी देवलाली में, उसमें ये गुणस्थान वो वहां उन्होंने परीक्षा दी तो पहला नंबर आया था सबका,
तीनों का। तो उनसे पूछा कि भाई कहां सीखे तुम, तो उसने मेरा नाम
तो मना कभी नहीं करना, बच्चे तो और ज्यादा जल्दी पिकअप करते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे हम ही नहीं समझते वो क्या समझेंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बाबा पहले प्रथमानुयोग पढ़ो फिर ये, ऐसा भी नहीं है, कितने लोगों की कहीं से भी रुचि हो जाती, कोई करना नहीं होगी पहले सीख लेता है। हमारे यहाँ भी एक भाई आते हैं अश्विन भाई, उनकी वाइफ प्रेरणा, तो प्रेरणा बहन तो पहले वो जहां वहां वो स्वाध्याय में जाती थी, अश्विन भाई को कहीं रुचि नहीं लगती थी, तो माटुंगा में मेरे वो करणानियोग परिचय के ऊपर वो 6 व्याख्यान हुए थे, उनका पर्यूषण चल रहा था, तो वे आए थे वो व्याख्यान में, तो व्याख्यान सुने और उनको ऐसा लगा अरे मेरे को कहां कहां तू ले जाती, मुझे वो नहीं, मुझे अभी यहां इस बहन के पास पढ़ना है, तो फिर रोज आने लगे। और तभी हमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका हमारे घर में चल रहे थे, स्वाध्याय ढूंढारी भाषा में ज्ञान मार्गणा चल रही थी और अत्यंत टफ विषय चल रहा था। तब से आके उनकी वाइफ ने बोला तुम नहीं आना, तुम कुछ नहीं समझोगे। तो मैंने उसको कहा आने दो उनको, अभी रुचि है ना, आना चाहते हैं, उनको कभी मत ना कभी मत कहना। तब से आने लगे और वो इतने इंटेलिजेंट है, तब से तो हमारे कितने कर्मकांड हुए, लब्धिसार क्षपणासार धवला के 16 के 16 भाग, अभी जय धवला में भी रोज बैठते हैं, इतना उनका क्षोभम है, जो सिखा रहे 4 स्टेप आगे की बातें उनको प्रश्न पूछते रहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं मालूम था सालों तक, अभी 1-1.5 साल से वो अभी शाम के भी प्रवचन में आते हैं, द्रव्य गुण पर्याय भी समय सार वगैरह सब पढ़ रहे, परंतु कौन से जीव को किस अनुयोग से कैसी रुचि लगे कुछ कह नहीं सकते। किसी को मना नहीं करना, उल्टा तो उसको प्रोत्साहन देना, नहीं आओ पढ़ो, 4 दिन आप सुनोगे, 5वें दिन से आपको जरूर समझ में आएगा। और होता भी ऐसा है, हम पहले रोक लगाते हैं ना अपने आप को या दूसरों को। तब मोना तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो गई थी और अब रोज दोनों ही बच्चों को सिखाती है, ये बहुत अच्छी है,
अच्छी बात है।
देखो छोटे बच्चों की आकलन तथा निरीक्षण शक्ति तीक्ष्ण होती है, बड़ों का अनुकरण करने की वृत्ति उनमें पाई जाती है। रीना 7 और 5 साल के तेरे रोहित और रोहन तेरे से स्वाध्याय की बातें तो सीखते ही है, साथ साथ कुदेवादिकों को नहीं मानना, देखो ये माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों पर संस्कार, अभक्ष भक्षण नहीं करना, बाजार के केक आदि न खाना, इस संबंध में भी वे बहुत चुस्त है। किसी के घर पर कोई नया पदार्थ खाने का प्रसंग आ जाए तो पहले वे पूछते हैं, मम्मी क्या तुम यह पदार्थ खा सकती हो, यदि हाँ तो ही हम खाएंगे। बच्चे बहुत, मैंने तो इंडिया से भी यहाँ देखा है, दे आर सो पर्टिकुलर, यहाँ के स्कूल के टीचर्स भी एक बार उनको बता दो कि इनको एग्स वाली चीजें नहीं खिलानी है तो वो बहुत देख देख कर, चॉकलेट हो या कुछ भी हो तो इतना वो केयर, इट्स वेरी गुड, हाँ बहुत, क्योंकि मैंने वो देखा है, वो सैन फ्रांसिस्को में मोनिका है मेरे भाई की लड़की, तो उसकी छोटी बच्ची अभी 5 साल की भी, उनका वो हेलोविन और कुछ था तो इतने सारे ढेर भर के उसको चॉकलेट बिस्किट सब कुछ मिला था, पूरा उलट पर रख दिया, मम्मी इसमें से क्या खाने योग्य है, तो उसमें से 2 ही निकले चॉकलेट, तो पूरा ले लिया और सारा जाके गार्बेज में डाल दिया उसने। उनको थोड़ा भी ऐसा नहीं होता लोभ या ऐसा कुछ कि अरे एक बार बता दिया ये खाने योग्य नहीं है, तो बिल्कुल वो भी मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। हमें ऐसा लगता कि वो बच्चे हैं अभी खाने दो ना, ऐसा होता है ना। बच्चों पर सुयोग्य संस्कार करना यही उनके हित की बात है, यही उनके लिए उत्तम धन है। ये सब बच्चे प्रशंसा के पात्र है ही। तुम दोनों भी सुयोग्य माता का कर्तव्य कर रही हो, इस बात का मुझे समाधान है। अब चलो अभी हम आगे देखेंगे। मुझे भी कहां अधिक ज्ञान है, मेरे अल्प ज्ञान में जो कुछ आया है उसे शास्त्रानुसार लिखने का विकल्प आता है, उसमें मेरा ही गहरा चिंतन हो जाता है। हो सकता है इसके निमित्त से तुम्हारी रुचि जागृत होकर तुम्हें मूल ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिले और ग्रंथों का अर्थ करने में तुम्हें सुलभता प्राप्त हो। ये जो स्थिति कांड घात है, अनुभाग कांड घात है, श्रेणी है, जो ये क्या है ये समझता नहीं है तो मूल ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अरुचि हो जाती है। वहां तो कोई ऐसा विस्तार से कोई कहीं लिखा नहीं होता है, तो इसलिए ये कोशिश यही है इस पुस्तक लिखने के पीछे कि जो स्पर्धक है, वर्ग क्या है, वर्गणा क्या है, निषेक क्या है, उसका परिभाषात्मक अर्थ लिखेंगे या कांड घातों का स्वरूप वर्णन करेंगे, तो जो कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बात सुलभ हो जाए। तुम्हारा प्रश्न था, तुम शुद्धोपयोग की तो बात नहीं कर रही हो, है ना नवीन बेन? हाँ। मात्र करण परिणामों के फलस्वरूप सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ऐसा बारंबार कह रही हो, ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न है। यह हम करणान योग द्वारा परिणामों तथा कर्मों का सूक्ष्म वर्णन देख रहे हैं। प्रत्येक अनुयोग की भाषा अर्थात वर्णन करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी इस विषय को इस प्रकार समझाते हैं। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से समझाया जाता है, ऐसा करना चाहिए, बाह्य आचरण है। द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है और करणानुयोग में सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। द्रव्यानुयोग में तो सिद्धांत बताते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है आदि आदि। द्रव्यानुयोग में स्थूल निरूपण होता है, कैसा? स्थूल निरूपण। और हम तो ऐसा देखते हैं कि हाँ समय सार की बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म कुछ नहीं होता, वो सब स्थूल होता है। सूक्ष्म की जिसे रुचि है उसे तो करणानुयोग पढ़ना चाहिए। द्रव्यानुयोग में उपयोग के तीन भेद बताए हैं, ये हम देखेंगे। शाम को देखा था कि नहीं आपने? कौन कौन से? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। छद्मस्थ जीवों के, ये छद्मस्थ क्या होता है? हाँ, अल्प ज्ञानी, जिसको केवल ज्ञान नहीं है, ऐसे बारहवें गुणस्थान तक के जीवों को कहेंगे छद्मस्थ जीव। सूक्ष्म ज्ञानी है हम, अल्प ज्ञानी है। छद्मस्थ जीवों के बुद्धिगोचर, बुद्धिगोचर है जो उनके ज्ञान में जाना जा सकता है, उन परिणामों की अपेक्षा से यह कथन किया जाता है। यानी जब हम शुभोपयोग कहते हैं, जो हमारे ख्याल में आ सके ऐसे जो परिणाम है, जैसे हमारे शुभ परिणाम हो रहे तो हम क्या कहेंगे? शुभोपयोग हो रहा है। इसमें धर्मानुराग रूप परिणाम शुभोपयोग है, ये धर्म है ने पुण्य शुभ भाव, उसको शुभोपयोग कहेंगे। पापानुराग रूप और द्वेष रूप परिणाम अशुभोपयोग है, क्या कहते हैं? धर्मानुराग, अनुराग दोनों जगह लिया। पुण्य क्या है? देव शास्त्र गुरु आदि के प्रति अनुराग, उसको हम कहेंगे शुभ राग। राग हो अनुराग, क्योंकि राग कहते तो मराठी में मुझे उसका बहुत गुस्सा आया, उसको राग कहते हैं। ये हिंदी वाला राग, यानी अनुराग जिसको कहते हैं, प्रेम उनके प्रति, आदर भक्ति, तो उसको तो शुभ उपयोग कहेंगे। पापानुराग, यहां भी पाप का अनुराग लिखा है, कौन से? अपने बाल बच्चों के प्रति अनुराग, विषयों के प्रति अनुराग, ये क्या है? पाप अनुराग है। देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग, तत्वों के प्रति अनुराग, मंदिर है, कोई शास्त्र है, कोई अपना धर्म है, जो कोई बाह्य में उसकी प्रभावना करनी है उसका अनुराग है, वो क्या है? धर्मानुराग। और बाल बच्चे, स्त्री कुटुंब, घर, सारा मकान, इसके प्रति जो प्यार अनुराग है वो क्या है? पापानुराग। पापानुराग पाप है ही है। अब अनुराग के अगेंस्ट द्वेष, द्वेष भी सभी पाप रूप है। अनुराग में दो भेद किए, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। और द्वेष भी असुर राग के साथ ले लिया।
धर्मानुराग के लिए पुण्यानुराग,
पुण्यानुराग पुण्य को ही धर्म कहते हैं।
शब्द यूज होता
होता ही है, क्योंकि हमने देखा धर्म पुरुषार्थ, यानी उसमें पुण्य का पुरुषार्थ लेते हैं। धर्मशाला क्या है, ये पुण्य के बदले धर्म शब्द आता है। उस दिन बताया था ना, धर्म पत्नी, धर्मशाला, और ये बहुत सारी बातें आते हैं। हमारे यहाँ ये धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है, धर्म लाभ हेतु आप पधारना, लिखते कि नहीं, ये कौन सा धर्म लाभ, पुण्य लाभ, पुण्य को भी धर्म कहते हैं।
धर्म
संकट है।
ये तो धर्म पत्नी का ना, ये तो धर्मानुराग
पुण्य पत्नी हो गई क्या?
नहीं हुआ।
अरे को तो नहीं कह रहा,
उसको पति राग अभी नहीं होना चाहिए।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, हमारे बुद्धि में आ सके ऐसे जो शुभ परिणाम है उसको शुभ उपयोग कहेंगे, जो पाप आदि जो परिणाम है उसको अशुभ उपयोग कहेंगे, और राग द्वेष रहित परिणाम को शुद्ध उपयोग। कौन से? जो राग द्वेष अपने ख्याल में नहीं आते, ऐसे जिसको द्रव्यान योग शुद्ध उपयोग कहता है, उस काल में भी राग द्वेष है कि नहीं है? नहीं है मानेंगे तो पूर्ण वितराग मानना पड़ेगा, ख्याल आए ना? तो उस काल में भी राग द्वेष है, परंतु वो बुद्धि गोचर नहीं है, स्थूल अपेक्षा है। वहां द्रव्यान योग जिसको शुद्ध उपयोग कहेगा, करणान योग तो बारहवें गुण स्थान में कहेगा शुद्ध उपयोग है। अनुयोगों की अलग अलग भाषा होगी। फिर समाज में आप ऐसा कहते हैं और हम करणान योग के अभ्यास है, तो हम कहेंगे नहीं, शुद्ध उपयोग होता ही नहीं चौथे में, तो ये झगड़ा होता है। हमें तो किस अनुयोग से, किस अपेक्षा से, कहां कौन सी बातें हैं उसको देखना है।
बोलेंगे
अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष है, उसके बुद्धि गोचर नहीं है, ये द्रव्यान योग का शुद्ध उपयोग है।
कुछ एग्जाम्पल?
एग्जाम्पल यानी जब आत्मा की अनुभूति कर रहे हो, तो चौथे गुणस्थान वाले को तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो वहां पर उसके अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष हो रहे है, उसका एग्जाम्पल देंगे तो वो बुद्धिपूर्वक हो जाएगा। अभी हम स्वाध्याय में बुद्धिपूर्वक यानी हमारे ज्ञान में क्या रहा है, हमारा शुभ उपयोग चल रहा है, तो इस काल में सूक्ष्म पाप परिणाम भी होंगे, सूक्ष्म अन्य परिणाम भी, शुभ परिणाम भी होंगे, जो हमारे बुद्धिपूर्वक यानी बुद्धि गोचर जो परिणाम है, तो सबकॉन्शियस में जो अबुद्धिपूर्वक जो भी परिणाम वो चलते रहते हैं, उसका वैसा बंद भी होता रहता है। अब उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी यहाँ रुकते हैं।
आपकी पुस्तक में कोई भी आपने द्रव्यानुराग करके नाम नहीं लिखा, कोई आपकी जो पुस्तकें हैं करुणानियोग की है, लेकिन द्रव्यानियोग करके टाइटल की कोई पुस्तक
आपका कहना है? मेरी किसी भी पुस्तक का टाइटल द्रव्यानियोग नहीं है, परंतु जो जैन तत्व परिचय है, कारण कार्य रहस्य है, ये द्रव्यानियोग के विषय की ही पुस्तक है, समझ में आया ना? तो नाम नहीं दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस अनुयोग का नाम देना चाहिए,
जैसे करणानुयोग का
एक करणानुयोग, क्योंकि करणानुयोग का परिचय यानी उसमें जो प्रवेश जो है, क्योंकि करणानुयोग नाम से लोग थोड़ा डरते भी उसमें कर्म की साधारण या कोई जीव समाज से बीज प्ररूपणा की बात उसमें आती है, उसकी उसमें चर्चा की है। अब यही हम रुकेंगे, बाकी चर्चा हम दोपहर में लेते हैं। ये भी अभी करना नहीं, उस संबंधी विषय है। बोलो 2400 भगवान की जय।